ओम शांति। किसी गांव में अकाल पड़ा, गरीबों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया और कुछ लोग मिलकर चंदा इकट्ठा करने लगे और उसी गांव में एक धनवान व्यक्ति था, एक धनपति जो कि बड़ा कंजूस भी था। पर गांव के लोगों को लगा कि जब गांव में ऐसा अकाल पड़ा है वो जरूर इस बार कुछ न कुछ तो देगा। वो सारे लोग उसके घर पहुंचे और उसको बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, भोजन का प्रबंध किया गया है, आप भी कुछ दान पुण्य करें। उस धनवान व्यक्ति ने तुरंत दान की महिमा चालू की। उसने कहा कि दान ही एकमात्र मार्ग है, दान ही धर्म का मूल है, दान ही सीढ़ी है और हर एक को दान करना ही चाहिए। जब ये शब्द सुने तो उन गांव वालों को बड़ा सहारा महसूस हुआ कि इस बार जरूर कुछ मिलेगा। और फिर वो धनवान व्यक्ति कहने लगा, अब चले चलते हैं। उन लोगों ने पूछा कहाँ? उस व्यक्ति ने कहा, दूसरों के घर दान मांगने के लिए। जब आप इतना बड़ा महान कार्य कर रहे हो तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी जाऊंगा और लोगों को समझाऊंगा दान की महिमा और दान देने से क्या क्या फायदे होते हैं। संसार में प्राय ये देखा गया है, जो दान की महिमा करते हैं वो दान कम देते हैं, जो दान के महत्व को सुनाते हैं वो कम महादानी बनते हैं। और वास्तव में हम क्या दे रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। हमारे पास अपना है क्या जो हम किसी को दे? और वास्तव में हम जिसे दे भी तो हमें स्वयं अनुग्रहित होना चाहिए कि हमें देने का मौका दिया गया। विदेश में संत था संत फ्रांसिस, वो पेड़ों से बात करता था, पेड़ों को अपना भाई कहता था, प्रकृति से बात करता था, चिड़ियों को अपनी बहन कहता था। ओ सिस्टर बर्ड, ब्रदर डोंकी, प्रकृति से ऐसा जुड़ा हुआ था, प्रकृति के हर चीज से, हर प्राणी से, हर वृक्ष से, हर पत्ते से, सूरज से, चंद्रमा से, झील से, झरनों से, जैसे उसका अस्तित्व और प्रकृति का अस्तित्व एक हो गया है। और जीवन आह्लाद से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, और वही वास्तविक देना है। जो देने का दिखावा करते हैं वो कुछ नहीं दे रहे। जिनको देने में ही आनंद की अनुभूति होती है, आह्लाद का अनुभव होता है, वही वास्तविक देना है। गीता में तीन प्रकार के दानों की चर्चा है, तामसिक, जिसको हम देते तो है परंतु वो दूसरे को दुख पहुंचाता है, राजसिक, जिसमें लोकेश ना है, जिसमें दिखावा है, आडंबर है, नाम की कामना है, सेवा तो कर रहे हैं पर उस सेवा के पीछे सूक्ष्म नाम की कामना है, वो राजसिक। और सात्विक वो जो निस्वार्थ भाव से दिया जाए, जो कि गुप्त है, जो प्रकट नहीं होना चाहता, वो गुप्त ही रहना चाहता है, वो सात्विक। बाइबल में उल्लेख आता है, जीसस क्राइस्ट कहता है अपने शिष्यों से, वहां पर भी एक कहानी सुनाता है कि एक साहूकार है, उसके पास बहुत पैसा है, उसे खेत में कुछ काम करवाना है, वो मजदूरों को बुलाता है, सुबह सुबह मजदूर आते हैं, काम करना चालू करते हैं, पर खेत बहुत बड़ा है और मजदूर और चाहिए, दोपहर में कुछ मजदूर आते हैं, वो काम करना चालू करते हैं, परंतु काम अभी और बाकी है, शाम को कुछ मजदूर आते हैं, वो काम करना चालू करते हैं, सुबह से जो मजदूर काम कर रहे, भूखे प्यासे काम कर रहे, दोपहर वाले भी काम कर रहे, शाम वाले भी काम कर रहे, शाम के तो अभी अभी आए हैं, और रात जब होती है तो सबको वो इनाम देता है, पारितोषिक देता है, पर आश्चर्य वो सबको समान पैसे दे रहा है, जितने सुबह वालों को दिए उतने ही दोपहर वालों को भी, और जितने दोपहर वालों को दिए उतने ही शाम वालों को भी, शाम वाले तो अभी भी आए, उन्होंने कुछ थोड़ा ही काम किया है, दोपहर वाले दोपहर से लगे और सुबह वाले तो सुबह से, और जब दोपहर वाले और सुबह वाले देखते हैं कि शाम वालों को भी उतना ही मिला, और सुबह वाले देखते हैं कि दोपहर वालों को भी उतना ही मिला, बड़े क्रोधित होते हैं, वो कहते ये क्या है, ये तो अन्याय है, पर वो साहूकार कहता है पैसा है किसका, मेरा, मैं चाहूं जो करूं, आई गिव आउट ऑफ अबंडेंस, इतना भरपूर है मुझ मेरे पास कि मैं उस भरपूरता की वजह से दे रहा हूं, क्या तुम्हें कुछ कम मिला जितना तुम चाहते थे, सुबह वाले कहते थे नहीं ज्यादा ही मिला, फिर तुम क्यों दुखी हो रहे हो, आई गिव आउट ऑफ अबंडेंस, प्रचुरता है, भरपूरता है, इसलिए दे रहा हूं। हम सब कौन है, दाता, और दाता अर्थात समर्थात्माएं, स्विच ऑन, जो समर्थ है, जो शक्तिशाली है वही दे सकते हैं, जो भरपूर है वही दे सकते हैं, जिनके पास है केवल वही दे सकते हैं। नए वर्ष की मुरली है, 93 पूरा हुआ, 94 चालू हो रहा है, जब भी अव्यक्तवाणी पढ़ो तो एक सूक्ष्म काम करना है, उस समय मैं कहां था जब ये वाणी चल रही थी। ऑफ कोर्स जिनका जन्म हुआ था वही, या फिर किसी और जन्म में भी होंगे, उस समय 93 31 दिसंबर पूरा हो रहा है और 94 चालू होने वाला है, उस समय मैं कहां था, क्या कर रहा था, संसार के एक छोटे से गांव में, भारत के एक छोटे से गांव में, आबू पर्वतों पर तब भगवान आया हुआ था, और तब उसकी यह दिव्य वाणी चल रही थी, तब मैं कहां सोया पड़ा था। हमेशा अव्यक्त वाणी की तारीख देखकर अपने जीवन की तारीख को याद करना कि उस समय व्हाट आई वाज डूइंग, और ये भाव लाना कि कितना देर हो गया, कितनी देरी हो गई, कितने भाग्यशाली है वो जो उस समय भगवान के सामने बैठे होंगे, वो छोटा सा समूह जिन पर भगवान की दृष्टि पड़ रही होगी। हम कहां खोए थे संसार में, संसार के भोग विलास में, संसारिकता में, आने में लेट हो गया है, ये भाव तीव्र पुरुषार्थ की ओर ले जाएगा, बहुत देरी हो गई है। सुबह की अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? कौन किसको देख रहा है? नवयुग का रचयिता, नवयुग रचने आया है वो, और हम सब कौन है? उसके सहयोगी। और हम सब कौन है? उस जैसे वो आधार मूर्त है, वैसे हम भी आधार मूर्त है, इस संसार के आधार मूर्त। केवल अपना आधार नहीं, परंतु इस विश्व की एक एक आत्मा के आधार मूर्त। बेहद का संगम युग है ये, हमारा नया जन्म है ये। इस ब्राह्मण जीवन में, नए जन्म में हरेक ने अनुभव किया है। किस बात का? नवीनता का। कौन कौन सी बातों में नवीनता? क्या क्या नया है हमारा? क्या नया नया है? नया जीवन, नया संसार, नया संसार, नई रीत, नई प्रीत, नई दृष्टि, नई वृत्ति, नई स्मृति, नई दिनचर्या, नए संस्कार, और क्या? नया चार्ट, नया चार्ट, और क्या नया? सब कुछ नया। इस नवीनता का अनुभव हो, ये नया जीवन है। पुराना छूट गया, पुराना अब इसमें नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं। न्यू लाइफ, न्यू बर्थ, नई रीत है, नई प्रीत है, नई दिनचर्या है, सब कुछ नया है। नई दृष्टि, नई वृत्ति, नई स्मृति, एक तो ये सब नया है। और एक नवीनता की चर्चा की है, वो कौन सी नवीनता? दो प्रकार की नवीनता है इस मुरली में, एक तो ये सब कुछ नया, और दूसरा ज्ञान में नवीन, योग में नया, नवीनता धारणा में नवीनता और सेवाओं में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, परसेंटेज में नवीनता, योगी बनाने में नवीनता, सब में नवीनता, हर चीज में नवीनता। बाबा को नवीनता बहुत पसंद है, बाबा को पुरानी चीजें पसंद नहीं है, पुराना पन पसंद नहीं है, न्यूनेस, न्यू एक्सपेरिमेंट्स, न्यू मेथोडोलॉजी, न्यू परसेंटेज, ज्ञान नया, योग नया, धारणा नई, सेवा भी नहीं, सब कुछ नया। ये काम करना है। और क्या कहा? कितने मंथ का चार्ट अपना देखना है या बनाना है? 3 मास, मार्च चालू हो रहा है, मार्च अप्रैल मई, 3 मास का चार्ट बनाना है। इन 3 मास में अपने अंदर वो नवीनता लानी है जो पिछले 3 साल या 30 सालों में नहीं आई। ऐसा काम करना है, एक नया काम। तो बाबा ने हमें सबको क्या कहा? हम कौन है? हम कौन है? आधार मूर्त। आधार अर्थात अगर आधार को हटा लिया जाए तो संसार गिर जाएगा। इतना बड़ा काम, प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ, एक एक पल, एक एक मोमेंट, एक एक लम्हा सजगता का हो, जागरण का हो। बेहोश हुए मिडगेट पुरुषार्थी नहीं बनना है, नया नवीनता। और नवीनता के लिए खोज करनी पड़ेगी, नवीनता के लिए मौन चाहिए, नवीनता के लिए एकांत चाहिए, नवीनता के लिए अंतर्मुखता चाहिए। अगर सुबह से लेकर रात तक दिनचर्या केवल बाह्य मुक्ता में जा रही है, इससे उससे लड़ाई करने में जा रही है, तो ये नवीनता कैसे आएगी, वो नई टचिंग्स कहां से होगी। आधार मूर्त और नया जीवन है, इसलिए नया उमंग उत्साह। कितना दिन चलना चाहिए उत्साह? हर समय, हर दिन, प्रतिपल, अविनाशी। इस उमंग उत्साह से क्या होगा? ये उत्साह के तीन बातें बताइए। ये उत्साह क्या है? ये उत्साह क्या है? पहला पंख है जो तुम्हें उड़ाएगा। दूसरा ये उत्साह क्या है? शक्ति है। और तीसरा ये उत्साह क्या है? रस। क्या है? रस। इस रस के सामने सारे रस फीके हैं, बेरस है, निरस है। तुम इस रस में जीते हो, इस रस को पीते हो। उत्साह का आहार करते हो। तो ये उमंग पंख है जो तुम्हें उड़ाएगा। जो उमंग उत्साह उत्सव है, हर दिन का है। संसार के लोग एक दिन के लिए मना रहे, उनके लिए एंड हो रहा है, ओल्ड ईयर, न्यू ईयर चालू हो रहा है। हमारे लिए तो हर दिन नया है। हर रात नहीं है, हर दिन नया है। तो इस उमंग उत्साह से पांच काम हो जाते हैं। कौन कौन से? अगर ये हो तो, अगर ये नहीं है तो ये पांच काम नहीं होंगे। कौन से पांच बातें? पांच की अव्यक्त वाणी। सबसे पहले चेहरे पे, दिल में क्या आ जाएगी? खुशी। अगर उत्साह है तो दिल में खुशी होगी। अभी अभी 8 बजे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, यंग, 30 इयर्स, खुद को टंगा लिया, हैंग कर लिया, फिर गवर्नमेंट में लेके गए, फिर यहां लेके आए। जस्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले उसको वेंटिलेटर पर डाला। सीरियस है, क्योंकि शादी हो गई है, बच्चे भी है, क्या कारण है पता नहीं, पर हम सोच रहे थे उसको देखकर आईसीयू में अभी कि जीवन में क्या हुआ, हो गया होगा इसके, जो इतना उत्साह, इतना नीरस हो गया जीवन, इतना हतोत्साहित हो गया कि उसे लगा अब जीवन का अंत ही कर देना चाहिए। उसके गले में निशान है। पत्नी को और बच्चों को बाहर जाने को कहा, दरवाजा बंद कर लिया, हैंग कर लिया। और 10 मिनट में फिर वो लोग आए, उसको उतारा, वहां से वहां, वहां से एम्बुलेंस, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल। अभी तो बेहोश है और बहुत सीरियस है। आईसीयू के बाहर इतने सारे रिश्तेदार, क्या हुआ होगा इसके जीवन में। 30 साल की उम्र है, कैसी उदासी छा गई होगी, जो उसने ये अंतिम स्टेप ले ली। संसार में दुख बहुत है, हर व्यक्ति दुख में जी रहा है, पीड़ा में जी रहा है। उत्साह नाम की कोई चीज वस्तु नहीं है, कोई चीज करने को दिल नहीं है। ऊपर से दिखा रहे हंसते हुए चेहरे है, फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स, अंदर से दुख है, घर घर में पीड़ा है, दर्द है, बेबसी है। और भगवान देखो हमसे क्या कह रहा है, तुम्हारा उत्साह सदा है, एक पल भी उत्साह के बगैर नहीं तुम हो, यही उत्सव है जीवन का। तो इस उत्सव से, उस उत्साह से पांच बातें हो जाती है। सबसे पहला दिल में खुशी, दूसरा मुश्किल सहज, मुश्किल आसान, तीसरा तूफान तोहफा, चौथा पहाड़ राई और रुई, और पांचवा परीक्षा, समस्याएं, क्या अनुभव होगी, मनोरंजन। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं है? हर एक के जीवन में समस्या है, परंतु हम उन समस्याओं को किस रूप से देख रहे हैं, किस रीति से देख रहे हैं। समस्या सबके पास है, पर किसी के लिए वो मनोरंजन है, किसी के लिए वो खेल है, और किसी के लिए सब कुछ पहाड़ है, तूफान जैसा है, उदासी में फेंक दिया है व्यक्ति को। क्या ऐसा उत्साह हमारे जीवन में है जिससे दिल में खुशी हो, जिसपे तूफान आ जाए तो तोहफा लगे, और समस्याएं आ जाए, परीक्षाएं आ जाए तो मनोरंजन लगे, हर मुश्किल सहज लगे। और मुश्किल के सिवा तो जीवन है ही नहीं, प्रॉब्लम्स, सब जगह प्रॉब्लम्स है, पर वही तो हमारे टीचर है। हर समस्या हमारी टीचर है, हर परीक्षा हमारी टीचर है, हर मुश्किल हमारा टीचर है, हर तूफान हमारा टीचर है, हर पहाड़ हमारा टीचर है। जितना मुश्किलों ने हमको सिखाया, क्या सुखद पलों ने हमें सिखाया? नहीं। जितना परिस्थितियों ने पाठ पढ़ाया, उतना किसने पढ़ाया? किसी ने नहीं। जो हमने भूले की जीवन में, उन्होंने हमें कितना सिखाया। योर ग्रेटेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? एकदम ताजी ताजी की हुई भूल तुम्हारी, अंतिम अभी अभी एक घंटे पहले जो हुई है। तो जहां उमंग उत्साह है वहां ये सब चीजें हो जाएगी। और इसी मुरली में बाबा ने कहा, अमृत वेला, इस उत्साह को क्या करो, रिवाइज करो, ये स्लोगन है, इसको इमर्ज करो। उत्साह में रहो, उत्सव में उड़ो, और दूसरों को भी उड़ाओ। इसको सारे दिन भर चेक करते रहना, ऐसा नहीं कि सीधा रात में चेक करना और दिन में भूल जाए। बस ये एक ही कला हो, और बस ये एक ही रास्ता हो, और किसी रास्ते पर नहीं चले जाना, और किसी कला का आलंबन नहीं लेना। ये एक ही कला, उड़ती कला, उत्सव की कला, सदा आनंद में रहना, सदा एंथुजियाज्म में रहना, एंथुजियाज्म बॉक्स। पर ये कितना कठिन काम है अगर एक रीति से देखा जाए तो। निरंतर उत्साह रहे, कभी दुख हो ही ना, कभी पीड़ा का अनुभव ही ना हो, निरंतर खुशी। ये तभी रह सकती है जब हम इस तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग में सतत आगे बढ़ते रहेंगे। जरा सा भी कुसंग भटक गए, जरा सा भी परचिंतन, व्यर्थ चिंतन भटक गए, जरा सा भी रूहानियत से डाउन हुए कि भटक गए। स्लोगन क्या है आज का? कौन है ज्ञानी तू आत्मा? जिसने रूहानियत का व्रत लिया है, जरा सा भी शरीर को अस्वच्छ किया, भटक गए। ये शरीर क्या है? वरदान क्या है आज का? इस आत्मा का मंदिर है, तुम ट्रस्टी हो, इसे स्वच्छ रखो। इस शरीर को यदि भोग विलास में डुबोया तो मार्ग से भटक जाओगे। ये वैराग का मार्ग है, तप का मार्ग है। हम तपस्वी बनने आए हैं, ना कि भोगी, ना कि रोगी, ना कि विलासी। सतत सतत और सतत स्थिरता, सतत सतर्कता, अंग्रेजी में एक कहावत है, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइज ऑफ लिबर्टी। यदि मुक्त होना है, अगर लिबर्टी लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, तो तुम्हें कीमत चुकानी होगी। कौन सी? इटर्नल विजिलेंस। इटर्नल विजिलेंस अर्थात सतत अविनाशी सतर्कता, अटेंटिवनेस, वॉचफुलनेस, हर मूवमेंट हर पल अत सतर्क. इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइज ऑफ लिबर्टी. क्यों मांगो सा. और इस मुरली में बाबा ने और एक चीज कही है. उमंग उत्साह चाहिए. कौन सा? कौन बताएगा इसका उत्तर? उमंग उत्साह तो चाहिए, परंतु कौन सा उमंग उत्साह? अविनाशी तो है ही, और कौन सा? नहीं नहीं, कौन सा उमंग उत्साह चाहिए? सदा उमंग उत्साह, अविनाशी उमंग उत्साह, कौन सा उमंग उत्साह चाहिए? विशेषण नहीं जोड़ो, कौन सा उत्तर होना चाहिए? बड़ा उत्तर. विशेषण नहीं जोड़ना उसके पीछे, अविनाशी, बड़ा, सदा. हम ही थे, हम ही है, और हम ही बनेंगे. क्या 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 उत्तर? अभी आधा हुआ है. हम ही थे, हम ही है, और हम ही बनेंगे, पर क्या? आधार मूर्त. यह है पूर्ण उत्तर. कौन सा उमंग उत्साह चाहिए? हम ही थे आधार मूर्त, हम ही हैं आधार मूर्त, और हम ही बनेंगे आधार मूर्त. ये उत्साह है. और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक ताज पहनना पड़ेगा. वो ताज लाइट का, डबल लाइट ताज हो. हमारी वृत्ति से विश्व का वायुमंडल बदलना है. हमारी दृष्टि से क्या करना है? प्रकृति और आत्माओं को पावन बनाना है. अब इस आंखों से इतने बड़े काम करने हैं, तो इन आंखों का क्या करना पड़ेगा? साफ सफाई अच्छी रखनी पड़ेगी आंखों की. अगर ये आंखें दूसरों के अवगुण देखने में व्यस्त है, तो विश्व को पावन कैसे करेगी? ये आंखें अगर निगेटिविटी देखने में व्यस्त है, तो विश्व को पावन कैसे करेगी? प्रकृति को पावन कैसे करेगी? अगर ये आंखें भोग विलास में डूबी हुई है, अगर ये आंखें देह पर टिकी है, अगर ये आंखें वो देख रही है जिसे देखने की इसे आज्ञा नहीं है, तो ये विश्व को और प्रकृति को पवित्र कैसे बनाएगी? किसी मुरली में बाबा ने कहा है, अमृत वेले बाबा से दृष्टि लो और विश्व को दृष्टि दो. ये आंखों का काम है. इतना बड़ा काम इन आंखों को करना है, इन आंखों से करना है. ये आंखें विचलित न हो, ये आंखें स्थिर रहे. इन आंखों को स्थिर रखने का अभ्यास योग में नवीनता है. संसार में लोग त्राटक का प्रयोग करते हैं, त्राटक योग. ग्रुप में बैठते ऐसे गोल, बीच में एक दिया या अगरबत्ती, और उसको देखते रहते हैं, और कहते हैं उससे कई सिद्धियां प्राप्त हो जाती है. परंतु सिद्धियों का और अध्यात्म का कोई संबंध नहीं है. सिद्धियां प्राप्त होना ये तो मन की एकाग्रता का परिणाम है. जैसे ही मन एकाग्र हो जाता है, ढेर सारी सिद्धियां अपने आप आने लगती है. रादर योग के मार्ग में सिद्धियों को बाधा कहा गया है. आप कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, ऐसी कोई सिद्धि नहीं है. क्लैर ऑडियंस, क्लैर वॉयंस, यहां बैठे हुए उधर क्या हो रहा है वो देख सकते हैं, दूसरों के मन में क्या विचार है वो जान सकते हो, भाव क्या है वो समझ सकते हो, सुन सकते हो. क्लैर ऑडियंस, क्लैर वायंस, पर ये सारी सिद्धियां है, सुपर ह्यूमन एबिलिटीज. इनका संबंध मन के एकाग्रता के साथ है, अध्यात्म से कोई संबंध नहीं. तो ये तो संसार में भी लोग करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. और हमारे काम तो बहुत बड़े हैं. अपने कर्म से क्या करो? एक तो वृत्ति से वायुमंडल बदलो, दृष्टि से आत्मा और प्रकृति को बदलो, और कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाओ। दृष्टि, वृत्ति और कृति, ये तीन काम दिए हैं। किनके? जो आधार मूर्त आत्मा है उनके। इतने बड़े बड़े काम है और हम कहां लगे हुए हैं? तू तू मैं, ये तेरा ये मेरा। भक्ति में कहते हैं भगवान दो समय हंसता है। कब? जब एक भाई दूसरे भाई से कहता है ये भूमि तेरी ये भूमि मेरी। भगवान कहते हैं सबै भूमि गोपाल की। एक ये, और दूसरा जब एक डॉक्टर पेशेंट के रिश्तेदारों से कहता है आप चिंता मत करो मैं उसे बचा दूंगा। भगवान कहता है मैं उसे मारने वाला हूं, और तुम कहते हो कि मैं बचा दूंगा। भगवान को हंसी आती है। इस मुरली को अगर देखो तो कहां से चालू हो रही है? सृष्टि का रचयिता, आधार मूर्त, सहयोगी, नया जीवन, नया देह, ये सब नया, फिर उत्साह, फिर उमंग, फिर आधार मूर्त। जैसे कि स्पीकर के माइंड में सब सेट है, ये बताना है, जैसे वो आज इन टॉपिक्स को लेने वाला है, और धीरे धीरे फिर और आगे बढ़ी महादानी और वरदानी। तुम्हें दान देना है। किन चीजों का? ज्ञान का, गुणों का और शक्तियों का। कब देना है? हर समय। किसको देना है? जो भी संबंध संपर्क में आए, ज्ञानी अज्ञानी कोई भी। और देना अर्थात क्या करना? सहयोग देना। और उसमें बाबा ने फिर तीन बातें बताई। अगर कोई निंदा करता है तो फिर क्या करोगे? अगर कोई ग्लानी करता है तो क्या करोगे? और अगर कोई क्रोध करता है तो क्या करोगे? सहनशीलता की शक्ति का तीर लगाओ। कब? मूल्यवान वस्तु कब कही जाएंगी? जब उसका मूल्य उस समय काम में आए, उस समय। इस यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 1969, समय पर ज्ञान याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है? समय पर, टाइम पर याद आ जाए, ये करना है। बाद में नहीं, टाइम पर। तो यहां बाबा ने दान के विषय में कहा है, देते रहो। अगर कोई क्रोध, अगर कोई निंदा करे तो क्या करो? शुभ भावना और शुभ कामनाएं। अगर कोई ग्लानी करे तो क्या करो? शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। ये देखा गया है कि हमारी शुभ भावना और शुभ कामनाएं कम हो जाती है, स्टॉक की कमी है। जो हमारी स्तुति करता है, जो हमारी महिमा करता है, जो हमारे लिए अच्छा सोचता है, उसके लिए हमारे पास बहुत शुभकामनाएं हैं। जितनी उसकी हमारे लिए नहीं है, उससे ज्यादा हमारी उसके लिए। पर जो हमारी थोड़ी सी भी निंदा करता है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, उसके प्रति कैसे भाव उमड़ते हैं मन में? निगेटिविटी। ये पहले से वैसा ही है, मुझे पहले ही पता था। निगेटिविटी की प्रवेशता बहुत तीव्र गति से होती है। पॉजिटिविटी धारण करने के लिए बहुत टाइम लगता है। और तीसरा है क्रोध। अगर कोई क्रोध करे तो क्या करो? क्या करो? छींटे। कौन से छींटे डालो? तेल के या तेल में? रहम भाव, शीतल। चेहरे पर और मुख पर क्रोध का भाव आना अर्थात छींटे डालना। वो परवश है उस समय। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो क्रोध करे, और क्रोध जो ऐसी चीज है अनित्य है। कोई 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारा स्वभाव ही नहीं है। परंतु क्रोध की अवस्था एक पागलपन की अवस्था है, इट्स अ स्टेज ऑफ मैडनेस। अगर क्रोध करता हुआ व्यक्ति की तस्वीर खींची जाए या वीडियो बना जाए और उसको ही बाद में दिखाया जाए तो वो मानेगा नहीं कि मैं हूं, वो अस्वीकार करेगा दिस इज नॉट मी। तो ये तीनों ही परिस्थिति आएगी जीवन में, निंदा, ग्लानी और सामने वाला भड़केगा, क्रोध करेगा। उस समय वरदानी बनना है। क्या करना है? वरदानी। उस समय यही वरदान है, उस समय यही सहयोग है उसके लिए, शुभ भावना देना, शुभकामनाएं देते रहना, यही हमारी महानता है। इसमें हम कम नहीं हो रहे। सबके सामने कोई अपमान कर रहा है, एक व्यक्ति अपमान कर रहा है, दूसरे का अपमान हो रहा है। जिसका अपमान हो रहा है वो सोचता है कि सबके सामने मुझे कुछ कुछ कहा गया, बहुत बुरा लगता है उसको। परंतु देखने वालों ने यह भी देखा है कि जिसका अपमान किया जा रहा है उसमें कितनी सहनशीलता है, इतना होने के बाद भी वो चुप है, ये भी देखा और शायद सीखा भी। उदाहरण इतिहास में है महात्मा गांधी का, मुरलियों में आता है तुम सब कौन हो, खुदाई खिदमतगार। किसने चालू की थी ये पार्टी? खान अब्दुल गफ्फार खान। वो सभा में बैठा था और सभा का एक आदमी खड़ा होता है और महात्मा गांधी को बहुत गालियां देने लगता है, तुम कायर हो, तुम डरते हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम भटका रहे हो, वगैरह वगैरह। तो महात्मा गांधी बस चुप है स्टेज पर। इस व्यक्ति ने यह भी देखा कि इस व्यक्ति ने इतनी गालियां दी परंतु सामने वाला चुप है। तभी उसको लगा कि जरूर इस व्यक्ति में कुछ तो है, कोई तो शक्ति है, और तभी से वो उनका फॉलोअर बना। फ्रंटियर गांधी उनको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरहद गांधी। ये एक दान था। किस द्वारा दान? कर्मों द्वारा दान, गुणों का। एक है वाणी से ज्ञान, एक है कर्मों से गुणों का, और एक है मन से शक्तियों का। ये बहुत बड़ा दान है। हमने किसी को कुछ सिखाया नहीं, हमने कुछ कहा नहीं, फिर भी किसी ने सीख लिया, कितना बड़ा पुण्य है ये। इसलिए अपनी दिनचर्या में एक्यूरेट रहना, ये बहुत बड़ा दान है। अपना अमृत वेला एक दिन भी मिस नहीं करना, ये सृष्टि के लिए दान है। एक दिन भी मुरली चिंतन मिस ना होना, क्योंकि हमारे श्रेष्ठ संकल्प, हमारे श्रेष्ठ विचार संसार में तरंगों की तरह फैलते। कितना दुख है संसार में, घर घर में दुख है, उनके लिए हम आधार मूर्त है। आधार मूर्त जाकर हमें चिल्लाना नहीं है, हम आधार मूर्त है। आधार मूर्त के नारे नहीं लगाने कि गांव वालों जागो, तुम्हारे आधार मूर्त आ गए, आ जाओ हमारी शरण में, सब छोड़ छाड़ के हम तुम्हारा उद्धार करके रहेंगे। उन्हें ऐसा उद्धार नहीं चाहिए। उन्हें कंधा चाहिए, उन्हें तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनना है। किसी के घर में डेथ हो गई है, वो क्या ज्ञान सुनना चाहते हैं? और हम अगर जाके सुने आए, उनको आत्मा विनाशी है। आत्मा समझ के उस बाप को याद करो, ये देह अनित्य है, तो क्या होगा? किसी महिला का पति मर जाता है, पड़ोसी नाती है और उसको बहुत समझाती है, क्या कर सकते हैं, आखिर हम सब आत्माएं हैं और आत्मा तो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। नयनं छिंदन्ति वस्त्राणि नयनं दहति पावक, आग उसे जला नहीं सकती है। और जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर हम नए वस्त्र पहनते, वैसे आत्मा ने पुराने वस्त्र छोड़ दिए, नए वस्त्र पहने। तुम रोती क्यों हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बहुत समझाती है उसको। और आखिर हम सबको भी तो एक दिन जाना ही है। आज तुम्हारा पति चला गया, कल तुम भी जाओगी, मैं भी जाऊंगी, सब जाएंगे, तो रोना क्यों, बंद करो रोना। कुछ मास के बाद ये जो पड़ोसी होती है उसका पति शरीर छोड़ता है, तब वो जोर जोर से रो रही है, तब वो पहली वाली आती है, उसको कहती है कि तुम क्यों रोती हो, अब मेरा पति जब मरा तो तुमने कहा था कि सबको मरना है। वो कहती है उस समय दैट वॉज योर हस्बैंड, वो तुम्हारा पति था उस समय। जिसको चोट लगी है वही दर्द को जानता है, दूसरा नहीं। ही दैट इज हर्ट नोज द पेन, बाकियों को नहीं पता चलता है दर्द का, कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। उस पीड़ा को महसूस करना, टू राइज टू दैट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ये आधार मूर्त बनना है। सब मेरे है, सब हमारे है, सब अपने हैं, और मुझे देना है। देना अर्थात सहयोग देना है, ज्ञान देना, देना अर्थात केवल ज्ञान देना नहीं, सहयोग। एक भिखारी भीख मांग रहा है, कितने लोग आते हैं, कोई दिखावे के लिए दान करता है, कोई कुछ, और अचानक एक छोटा सा बच्चा आता है, वो कहता है मेरे पास आपके लिए देने के लिए कुछ नहीं, और उसका हाथ पकड़ता है, और उस भिखारी को इतनी खुशी होती है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने जो किया आज तक किसी और ने नहीं किया था, यही सबसे बड़ा दान है। और यदि हम इस संसार को देखें तो ये संसार की कहानी भूख और भिखमंगों की कहानी है। चारों तरफ भूख है और चारों तरफ भीख है, सब भीख मांग रहे हैं, देना कोई नहीं चाहता, सब लोग लेना चाहते हैं, प्रेम कोई देना नहीं चाहता, सब लोग मांग रहे तुम मुझे प्रेम करो, सब लोग मांग रहे। और भगवान हमको क्या सिखा रहा है, दो, गिव, गिविंग इज टेकिंग। तो महादानी बनने के लिए कहा, मुरली को आगे बढ़ाते हैं, और क्या कहा इस मुरली में, नवीनता लाओ, नवीन चार्ट। किन बातों में नवीनता, सबसे पहली नवीनता ज्ञान में, कौन सी नवीनता लाएंगे, मुरली सबने सुनी है और पढ़ी भी है, इसलिए बताओ कौन सी नवीनता लाएंगे ज्ञान में। मुरली को समझने के लिए कम से कम दो बार रीडिंग आवश्यक है, मिनिमम। समझ और ज्ञान और समझदार बनना, ज्ञान में नवीनता अर्थात जिस धारणा की कमी हो उस धारणा को भरना, यह है ज्ञान में नवीनता। योग में नवीनता परसेंटेज को बढ़ा देना, वो है नवीनता। प्रयोग करना, वो है नवीनता। दूसरों को योगी बनाना, ये है नवीनता। विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, इन सब चीजों में नवीनता लाना है। सेवा में कौन सी नवीनता लाएंगे, दो प्रकार की नवीनता सेवा में, पहली वो सेकंड है, पहली किसको पकड़ने को कहा, नेताओं के नीचे कौन होते हैं, सेक्रेटरी, असिस्टेंट, मैनेजर्स, इनको पकड़ो, और पकड़ के क्या करो अपना बनाओ। बाबा ने कहा वो बदलते नहीं है, ऊपर वाले बदल जाते हैं, इसके लिए उनको सहयोगी बनाओ। एक और दूसरा काम, जो भी संस्थाएं हैं, बनी बनाई स्टेज है उनके पास, कुछ भी नहीं छूटनी चाहिए, इकोनॉमी। इकोनॉमी किसमें, संकल्प, समय संपत्ति SSS कुछ भी व्यर्थ ना जाए, संकल्प व्यर्थ ना जाए, बोल व्यर्थ ना जाए, पैसे व्यर्थ ना जाए, खजाने इतने सारे खजाने वो भी व्यर्थ ना जाए। वर्तमान समय एक बहुत बड़ा जिसको कहेंगे शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ये एक व्यसन है। क्या करना पड़ता है, केवल क्लिक 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 करते जाओ, तीन चार क्लिक हो गए चीज पहुंच जाती है। और कितनी अननेसेसरी चीजें, कई लोग केवल उसमें बिजी रहते हैं, क्या नया आया है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट में सब मिल सकता है, सत्य छोड़कर, अनुभूति छोड़कर, वो भी एक व्यसन है। एक तो है ऑनलाइन शॉपिंग और दूसरा है ऑनलाइन न्यूज, इसने क्या किया, उसने क्या किया, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ये दोनों ही भटकाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन न्यूज। तो इकोनॉमी करो। तो ये थी बात न्यूनेस की। धारणा में क्या न्यूनेस लाएंगे, इसकी चर्चा नहीं है मुरली। धारणा में क्या न्यूनेस लाएंगे, इस जीवन की सबसे बड़ी धारणा कौन सी है, प्यूरिटी। और प्यूरिटी का भी आधार क्या है, ब्रह्मचर्य, न्यूनेस इन ब्रह्मचर्य। अगर ये ब्रह्मचर्य की धारणा खंडित हो रही है और बाकी सब ठीक चल रहा है, ज्ञान ठीक चल रहा है, योग कर रहे जो भी कर रहे हैं और सेवाएं तो बहुत कर रहे हैं, हर प्रकार की कर रहे, परंतु प्यूरिटी और प्यूरिटी में भी ब्रह्मचर्य यदि हिल रहा है तो क्या कहेंगे, मार्क्स जीरो, मार्क्स जीरो। और ये सबसे बड़ी धारणा है, इसमें नवीनता। ये कहां खंडित हो रही है, क्यों खंडित हो रही है, कब खंडित हो रही है, किस स्थान में खंडित हो रही है, किस व्यक्ति के वजह से खंडित हो रही है, किस समय खंडित हो रही है, किन परिस्थितियों में खंडित हो रही है, किसको देखने से खंडित हो रही है, किसको सुनने से खंडित हो रही है, किसको स्पर्श करने से खंडित हो रही है, किसके संग में रहने से खंडित हो रही है, किसके विचार आने से खंडित हो रही है, किसके स्वप्नों से खंडित हो रही है, कौन सी इच्छाओं से खंडित हो रही है, ब्रह्मचर्य की धारणा। इसमें नवीनता लानी है, रिवाइज, इस प्रतिज्ञा को रिवाइज करना है रोज। भगवान को वो आत्माएं बहुत प्रिय है जो बहुत प्योर है। भगवान ये नहीं चाहता, देखता कि तुम में कितनी कलाएं हैं, सेवा कितनी करते हो, ये कितना करते हो, वो कितना, भाषण कितना अच्छा देते हो, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। उसे वो आत्माएं बहुत प्रिय है जो बहुत शुद्ध है, जो बहुत प्योर है और जिनको पवित्रता के लिए अगाध प्रेम है। तो उस पवित्रता को, उस प्यूरिटी को, उस ब्रह्मचर्य को बार बार रिवाइज करना, जो उसमें फ्लॉज है, डिफेक्ट्स है, वो निकालते जाना। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक दिन में नहीं सत्ता है, यात्रा है ब्रह्मचर्य बहुत लंबी। चाहे कोई काम विकार के बारे में कितना भी कुछ कहे, परंतु हर व्यक्ति अपने अनुभव से ही सीखता है कि उसमें दुख है। केवल दुख नहीं, सबसे बड़ी हिंसा है, इट इज वायलेंस। इसकी संपूर्ण अनुभूति अब तक सबको नहीं हुई है। यह भी कितना आश्चर्य है, घर में माता पिता को बच्चे बचपन से झगड़ते हुए देखते हैं, फिर भी बड़े होने के बाद शादी करने का विचार अब भी रहता है। बचपन से देख रहे घर में कलह है, फिर भी बड़े होने के बाद ख्वाब तो रहता ही है। दुखदायी स्टेटमेंट है, परंतु संसार में कहते हैं हैप्पी मैरिज इज अ मिथ। तो ये सारी बातें आज की मुरली में है। तो क्या क्या होमवर्क लेंगे आज की मुरली से? पहला, उत्साह को खोने नहीं देना है। फाइंड आउट लीकेजेस, लूप होल्स, कहां उत्साह की कमी हो रही है, क्यों कमी हो रही है, क्यों किसी व्यक्ति में इतना उत्साह होता है और किसी में बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट किसी को बहुत ज्यादा है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है किसी को इस मुरली में। और एक चीज कहिए, अगर नवीनता होगी तो तीव्र पुरुषार्थ में समीपता होगी। ये बहुत अच्छा वाक्य लगा मुझे, अगर नवीनता होगी तो तीव्र पुरुषार्थ में समीपता होगी। और वरदानों के लिए भी एक बात कहा, जो तुम्हारी जड़ मूर्तियां है वो संस्कार अब भरने हैं, देने के, वरदान देने के या दान देने के। ये दो बहुत स्ट्रांग वाक्य है इस मुरली में। तो पहला होमवर्क एंथुजियाज्म, दूसरा होमवर्क देना, देना, देते रहो, कुछ ना कुछ देते रहो, और तीसरा नवीनता, कुछ ना कुछ नवीन करना है। कल का अमृत वेला एकदम नया हो, कल का उठने का टाइम भी एकदम नया हो, कल उठते ही जो पहला संकल्प हो सबसे नया हो। संकल्प ही करो कि मुझे कल बाबा के सामने ये प्रतिज्ञा करनी है, बहुत पावर आएगी। छोटा सा संकल्प सोते समय सुबह 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे उठा देगा। संकल्प उठाता है, घड़ी नहीं, और शक्ति भरेगा। ऐसे कैसे नवीनता लाने वाले बच्चों को, ऐसे उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, ऐसे उमंग उत्साह, पंग उमंग उत्साह, शक्ति उमंग उत्साह का रस आस्वादन करने वाले बच्चों को, ऐसे ऐसे फटाफट बोलते जाओ, आधार मूर्त आत्माओं को, ऐसे मिडगेट पुरुषार्थी न बनने वाली आत्माओं को, ऐसे वरदानी मूर्त आत्माओं को, महादानी आत्माओं को, ऐसे ऐसे समर्थ आत्माओं को, स्विच ऑन करने रखने वाली आत्माओं को, बच्चे भी स्विच ऑन करते हैं आजकल, ऐसे उड़ती कला वाली आत्माओं को, ऐसे नंबर वन श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसे ऐसे सहयोगी आत्माओं को, ऐसे ज्ञानी तो आत्माओं को, ऐसे ट्रस्टी आत्माओं को, ऐसे इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखने वाली आत्माओं को, ऐसे रूहानियत का व्रत लेने वाली आत्माओं को, ऐसे इकोनॉमी और एक नामी करने वाली आत्माओं को, ऐसे शॉपिंग, ऐसे ऐसे ढेर सारे सामानों वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।